जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोयो पायो जी मैंने, जग में सभी खोयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो।
ओम शांति। अत्यंत बुद्धिमान और रिसर्च ओरिएंटेड बिल्ली लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, गहन अध्ययन, और पढ़ते पढ़ते उस बिल्ली के हाथ में किताब आई। किताब का नाम था ट्रेजर आइलैंड, खजानों का द्वीप, और उसमें उसे एक ट्रेजर मैप नक्शा दिखा और उसने संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प, कि कैसे भी करके मुझे इस खजाने तक पहुंचना है। तो वो निकल पड़ी वो मैप को लेकर, नक्शा लेकर, और जाते जाते जंगल आ गया और अंधेरा बहुत था, और उसकी मुलाकात एक शेर से हुई, और उसने उस शेर से पूछा, मैं ट्रेजर हंट, इसको कहते हैं ट्रेजर हंट, खजाने की खोज में जा रही हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो वो शेर कहता है, क्यों नहीं, खजाना किसको नहीं चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। वो भी उसके साथ चल दिया, और जब शेर बिल्ली के साथ होता है तो बिल्ली अब निश्चिंत है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति साथ ही है, तो उसे कोई भय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है। नक्शा कहता है पहाड़ को पार करना पड़ेगा, तो उनको वहां पर एक गरुड़ मिलता है, बाज पक्षी। बिल्ली उससे पूछती है, क्या तुम मैं हमारे साथ चलोगे, क्योंकि तुम्हारी जो आंखें हैं बड़ी तीक्ष्ण है, तुम दूर का देख सकते हो। वो कहता है, क्यों नहीं, वो साथी बन के चलता है। तो तीनों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ी खाई आती है, और खाई में बड़ी ठंड है, तो वहां पे एक भेड़ मिलती है बिल्ली को, और बिल्ली उससे पूछती है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? वो कहती है, क्यों नहीं। और जब ठंड लगती है तो सब वो भेड़ के जो क्या कहते हैं उसको, ऊन, उसमें सारे छिप जाते हैं, तो उनकी ठंड थोड़ी कम हो जाती है। तो अब शेर, बिल्ली, वो बाज पक्षी और ये भेड़ खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। बिल्ली के हाथ में उसका नक्शा है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान इस ग्रुप में बिल्ली ग्रुप लीडर है, क्योंकि किताबें उसी ने पढ़ी थी लाइब्रेरी में, बाकियों को तो कुछ पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते एक रेगिस्तान सामने आ जाता है, और रेगिस्तान और एक ऊंट बैठा हुआ है। बिल्ली कहते ऊंट भैया, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम जा रहे हैं खजाने की तलाश में, ट्रेजर हंट के लिए। वो कहता है क्यों नहीं, खुशी खुशी से तैयार हो जाता है, और वो सब के सब उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और वो डोलते हुए जाता है, सबको बड़ा आनंद आता है, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और नक्शे के अनुसार, जीपीएस नक्शे के अनुसार अब एक बहुत बड़ा समुंदर आने वाला है, और समुंदर आके दिखता है तो सब खुश हो जाते हैं कि हम सही दिशा में हैं। पर अब समुंदर को कैसे पार करें? तो एक बड़ा सा कछुआ वहां होता है, वो उसको कहती है कि कछुए को हमको उस पार ले चलोगे? तो वो कहता हाँ बिल्कुल, और एक एक को बिठा के आराम से उधर ले जाता। बीच में थोड़ी मुश्किलत भी आती है, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि शेर का पैर फिसल गया तो सबने मिलकर रस्सी से उसको बाहर खींचा ऊपर, ऐसा भी हुआ क्योंकि मार्ग दुर्गम है। और अंततः उस टापू पर पहुंचते हैं, उस वीरान टापू पर, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, ट्रेजर ट्रेजर ट्रेजर, खजाना खजाना खजाना। और एक उल्लू वहां आता है जो कि उस टापू का मालिक है, और वो कहता है कि आप सबको बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि आपने खजाना पा लिया। बिल्ली कहते हैं पा लिया, कहां है खजाना, खजाना तो है ही नहीं कहीं। वो कहता है ये जो तुम साथ में आए, ये जो तुमने पहाड़, ये जो तुमने रेगिस्तान, और ये जो तुमने जंगल, और ये जो तुमने समुंदर पार किया, कैसे पार किया? एक दूसरों के सहयोग से, एक दूसरों की ये जो मैत्री है, ये जो फ्रेंडशिप है, यही सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ा खजाना कोई और है ही नहीं। इसी खजाने का वर्णन उस किताब में है जिसको तुमने पढ़ा था। तो ये था असली खजाना। खजाना कभी वो नहीं होता है जो हमने सोचा होता है, खजाना कभी दूसरा ही निकलता है हर बार। जैसे वो किसान जिसके बेटे आलसी है और मरते मरते कहता है खजाना है, और वो खोदते हैं और क्या निकलता है, फसल। वो फसल ही खजाना थी। इसके लिए खजाना वैसा नहीं मिलेगा जैसे संसार में होता है। तंदुरुस्त बनना है तो ये मत समझना बहुत वैभव मिल जाए, वैभव से तंदुरुस्त नहीं बनोगे कभी। याद से बनोगे और ददीची मिसल हड्डियां दे दो इससे बनोगे। रग रग में भूत भरे हुए हैं, भूतों को निकालो तब तंदुरुस्त बनोगे। तो खजाना, खजाना अर्थात ट्रेजर। परिभाषा क्या है खजाने की? खजाना किसे कहा जाता है? खजाना किसे कहा जाता है? शब्दकोश खजाने शब्द का क्या अर्थ कहता है? खजाना अर्थात वह धन जो कहीं गड़ा हुआ है और जिसको रीडिस्कवर किया गया है, वो धन जो गुप्त है, जो हिडन है, जो कहीं ना कहीं दूर कहीं है और जिसका वर्णन है, उसके साथ ऐसे शब्द आते हैं ट्रेजर, ट्रेजर हंट, ट्रेजर मैप। हमेशा खजाने के लिए क्या चाहिए रहता है? मैप। ये खजाना आया कहां से? जैसे पूर्व जमाने में डाकू होते थे, बहुत लूट कर लाते थे और फिर क्या करते थे, गुफा में तो जमीन के नीचे तो कहीं पहाड़ के पास कहीं ना कहीं खजाना दबा के रखते थे। तो जो पायरेट्स, जो डाकू थे, वो ही ये सारे खजाने, या कोई राजा जिसके पास किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया और इतना खजाना है, इससे पहले कि वो दूसरा राजा आ जाए हम तो मर जाएंगे, पर खजाना कहीं और रहे। और खजाना कहीं गाड़ देते थे, खजाना कहीं छिपा के रखते थे और उसके कुछ चिन्ह छोड़ जाते थे। और ये जो धन है, ये जो गुप्त धन है, इसे जब जो फिर से पाया जा सकता है, ऐसी जो धन संपदा है उसको कहा जाता है ट्रेजर, खजाना। जो खो गया है जो फिर से पाया, जो प्राय जो लुप्त प्राय हो गया है उसे फिर से पाया, वो जो प्राचीन ज्ञान और योग था, वो जो खो गया था, मैं आकर तुमको फिर से सुनाता हूं। इसके लिए उसका एक एक महावाक्य ही क्या है, खजाना है। तो बाबा जब खजाना बोल रहे तो ये मत समझना कहीं से हीरे जवाहरात वो सब मिलेंगे और मुरली मिल गई तो एकदम दुखी हो गए कि यही है क्या वो, हमने तो कुछ और ही सोचा था, हमने तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं की थी। एक महावाक्य ही खजाना है। सोचो एक करोड़पति व्यक्ति जिसके पास इतने धन संपत्ति है, रात को सो नहीं पाता, नींद की गोलियां खा खा भी सो नहीं पाता, और एक गरीब व्यक्ति जो थोड़ा सा दुखी हो गया, फिर सेवा केंद्र पर पहुंच गया और सेवा केंद्र पर उसने कोर्स किया और एक महावाक्य सुना कि संतुष्ट मणि भव, जो मिले जो तुमको मिला है उसमें संतुष्ट रहो, और वो वाक्य उसके अंदर जहन में समा गया और वह घर गया और उसने स्वीकार कर लिया कि जो कुछ मेरे पास है मैं संतुष्ट हूं, आराम से सो गया। अब बताओ ये जो महावाक्य उसने सुना ये क्या था, खजाना था ना। उसकी तुलना में वो जो दूसरा था उसके पास कितना धन है, पर वो क्या फायदा। ज्ञान अर्थात जो हमें भर दे, तो ज्ञान क्या है, खजाना है। और भगवान ने कई खजाने दिए हैं, अनगिनत खजाने दिए हैं, बेशुमार, बेहिसाब, बेपना, काउंटलेस, इन्फिनिट, अननंबर्ड। उसके ये सारे खजानों में सबसे बड़ा खजाना और सबसे प्रथम खजाना कौन सा है, ज्ञान। कौन सा खजाना है, ज्ञान। और ज्ञान खजानों का भंडार क्या है, मुरली। सखी रे मैंने पायो तीन रतन, कौन कौन से, एक मुरली, एक बाबा और एक मुरली मधुबन, यही खजाना है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ज्ञान रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चा ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये खजाना कैसा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा, जितना मुरलियां सुनो उतनी बढ़ती जा रही है, खजाना बढ़ रहा है दिन रात। बढ़ रहा है, खर्च नहीं होता है, या कितना भी खर्च हो फिर भी बढ़ता है। यह खजाना कैसा है, दिन रात बढ़ते जाता है, दिन रात। सत की नाव खिवटिया सदगुरु, खिवैया कौन मिला है, सदगुरु मिला है। भवसागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान ही रत्न है और उसका दिए हुए, उसके मुखार विंद से निकले हुए वो सारा तो क्या है, बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। वो है महामंडलेश्वर और तुम कौन हो, महामंडली है, तुम हो महान आत्माएं। उनके पास वो ज्ञान नहीं है जो तुम्हारे पास है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी, कौन किसको मिलने आया है, कौन किसको मिलने आया, रत्नाकर बाबा आया है। कौन किससे मिलने आया है, कौन आया है किससे मिलने, अरे बोलो ना। हाँ हाँ, किसका, नवयुग का रचयिता आया है। और बाप दादा कहाँ आए हैं, ये महफिल कैसी है, ये रूहानी महफिल है, ये अलौकिक महफिल है, इस अलौकिक महफिल में बाप दादा आए हैं। और ये मिलन क्या करता है, दो बातें करता है, दो 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 से मुरली को रिवाइज करेंगे। ये मुरली, ये बाप, ये मिलन कैसा है, ये मिलन केवल अभी होता है और कभी नहीं होगा, सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। ये मिलन का समय केवल अब है, ये मिलन केवल अब होता है और किसी भी युग में नहीं होगा, सतयुगी सृष्टि में यह मिलन नहीं होगा, केवल अब। तो भगवान आए हैं, कहाँ आए? महफिल में आए हैं। शमा आया है, शिव शमा, कहाँ आया? इस अलौकिक महफिल में आया है और इस रूहानी महफिल में आया है। एक हिंदी एक उर्दू, दो शब्द। और संगम युग, आठ नाम गिनाए संगम युग के। ये युग कैसा है? महान युग है, महान युग है। इसके लिए हमारे कर्तव्य भी महान होने चाहिए, संकल्प भी महान होने चाहिए। दादियों को बाबा ने कहा, महान सेवाधारी, स्वतः सेवाधारी, सदा सेवाधारी। आत्मा का श्वास ही क्या है आशीष भाई? सेवा। और आत्मा का ऑक्सीजन? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही आत्मा का ऑक्सीजन है। आत्मा मर जाएगी बिना प्यूरिटी के। कौन मरेगी? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो मर जाएगी, आत्महत्या हो जाएगी। किसकी? अविनाशी आत्मा की। सबसे पहला ये युग कैसा है? महान युग है। दूसरा, महामिलन का युग है। यह मिलन केवल अब हो रहा है, और किसी युग में यह मिलन नहीं होगा, ऐसा महान मिलन। और यह मिलन केवल ऐसे नहीं कि भगवान सामने है तब मिलन हो रहा है, प्रतिपल मिलन हो रहा है, हर दिन मिलन हो रहा है। संकल्पों का यह मिलन है, उसको याद किया और मिलन हुआ। इसके लिए बार बार मिलन मनाते रहना है। संकल्प करते ही भगवान हाजिर। तीसरा, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने का यह युग है। जो भी प्राप्तियां हुई है, अविनाशी प्राप्तियां, सूक्ष्म प्राप्तियां, उनका अनुभव करने का यह युग है। सब कुछ किया पर अनुभव ही नहीं किया, केवल सेवा में लगे हुए हैं, विस्तार में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसको क्या कहेंगे? एक ब्रह्मा कुमारी बहन, बड़ी 30-40 साल से जो ज्ञान में है, उसने एक बार अनुभव सुनाया था कि जब वो यंग थी, नई नई ज्ञान में आई थी, बहुत नशा था और सेंटर पर रहने लगी थी, तो ट्रेन में सफर कर रही थी और एक महिला बैठी थी, बड़ी ज्ञानी थी संसार की दृष्टि से, और वो अपना चालू कर दिया इसने कोर्स का किताब खोल के तो पूरा समझा दिया उसको एक घंटे में कंप्लीट, सीधा आत्मा से चालू किया, ब्रह्मचर्य तक पूरा कर दिया तो उस बहन ने पूछा, ये आप मुझे क्यों बता रहे हो? उसने कहा, सेवा है ये तो उस बहन ने कहा, आप लोग सेवा नहीं कर रहे हो, आप ना प्रचार कर रहे हो, आप लोग सेवा नहीं कर रहे हो, प्रचार करते हो केवल, ना तो कोई अनुभव हुआ, ना तो कोई गहराई थी, खाली सूचनाएं थी। पहले ज्ञान में नहीं थे तो क्या करते थे? रोटी खाते थे। अभी ज्ञान में है, चित्र में है ना, अभी पूरी तल रहे, ऐसा ही चित्र है ना, उसमें चित्र तो ऐसा ही दिखाया है, सहज राजयोग। इधर लड़ाई कर रहे हैं, चित्र में दिखाया है रोटी बना रहे हैं, और इधर पूरी। तो ये है कोर्स, आगे चलो फटाफट, टाइम कहां है? कोई प्रश्न मत पूछना, जो प्रश्न पूछना है बाद में पूछना, बड़ी बहन से, हमसे मत पूछना, हमको तो कोर्स कराना है, काम उतना दिया है, ये सूचनाएं हैं। तो उस बहन ने कहा कि ये जो बात थी उसने कही ना, मुझे एकदम धक्का लग गया। हम तो बाबा बाबा सेवा सेवा सेवा, केवल सोशल वर्कर नहीं बन जाना है। सोशल वर्करों की कमी नहीं है संसार में, समाज सेवकों की। हमारी रूहानी सोशल वर्क है, उसमें कुछ एडिशन चाहिए। तो ये युग कैसा है? सूक्ष्म अनुभव करने का योग है। चौथा, असंभव को संभव करने का योग है। जो बात हमने आज तक सोची कि असंभव है, नामुमकिन, उस नामुमकिन को मुमकिन करने का योग है। उस असंभव को, इम्पॉसिबल को, आई एम पॉसिबल बनाने का योग है। तो अपने जीवन में ऐसी कुछ धारणाएं देखनी है जो असंभव सी लगती है, पर जो दूसरे के जीवन में है ठीक ठाक, उन पर काम करना है। क्योंकि काम करने का समय कौन सा है? संगम युग, अभी करना है। रग रग में भूत समाए हुए, भरे हैं, बाबा ने कहा आज, निकालो भूतों को, भूत भगाओ अभियान। असंभव को संभव। अगला, ये युग कौन सा है? ये विशेष परिवर्तन का युग है, इसके लिए यहां परिवर्तन होना है। अभी परिवर्तन नहीं हुए तो कब होंगे परिवर्तन? खुद को यहां परिवर्तन कर देना है। लोग लगे, अरे तुम तो कल जैसे नहीं दिख रहे, कुछ और लग रहे, ये तो कुछ सब कुछ अलग अलग बदला बदला सा लग रहा है तुम्हारा। कौन सी पाउडर लगा के आए पता नहीं। तो विशेष परिवर्तन का युग है। अगला, विश्व कल्याण का ये युग है। किसका युग है ये? विश्व कल्याण का युग है। उसके बाद अगला, वरदान का, सहज वरदान प्राप्त करने का युग है। इसके लिए वरदान प्राप्त करने, सुबह सुबह अमृत वेले से वरदानों से भर देना है। भगवान वरदान दे रहा है, हाथ देख लेना सीधा, वो ना रखे तो उसका हाथ उठा के रख देना इधर कि रखो, बहुत देर कर लिया, सोचा आप खुद करोगे और वो कर ही नहीं रहा तो क्या करे, हाथ उठाओ उसका और रखो इधर, हाँ अभी ठीक है। हाँ, बहुत देर से उसके ऊपर रखा हुआ है, अब मेरे भी तो कुछ देखो, हमने क्या किया ऐसा, तो सुबह सुबह क्या करना है, वरदान ले लेना है बाबा से। और लास्ट आठवां, दो हमने अलग एक कर दिए, एक था प्राप्तियों का, एक है अनुभूतियों का। अविनाशी प्राप्तियां और ये एक था अनुभूति, हो गए आठ। तो ये संगम युग है, ये तो आठ। अब दूसरा बताओ, ये युग कौन सा है मनी भाई? धर्माऊ युग है। ये युग कौन सा है? कल्याणकारी युग है। ये युग कौन सा है? उड़ती कला का युग है। ये युग कौन सा है? कमाऊ कमाई का युग। ये युग कौन सा है? एक का पदम गुना पाने का। ये युग कौन सा है? भगवान को खाली करने का युग है। ये युग कौन सा है? संपन्न बनने का, समान बनने का। यह युग कौन सा है? 16 कला संपूर्ण बनने का, सारे दैवी गुणों को अपने अंदर भरने का, 36 गुणों को भरने का, 16 कलाओं को भरने का, 8 शक्तियों को भरने का, 9 खजानों को भरने का, मौज मनाने का, मौजों का, भगवान के साथ, भगवान को जीवन साथी बनाने का, उसके साथ रहने का, साथ चलने का, सब कुछ उसके साथ करने का युग। और कौन सा युग है ये? एक मत, इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, युग एक फेरिस्ट अपनी अपनी बनाऊं कि ये युग महान युग है, ये महान युग है, महामिलन का युग है, प्राप्तियों का युग है, अनुभूतियों का युग है, विश्व कल्याण का युग है, विशेष परिवर्तन का युग है, असंभव को संभव करने का युग है और सहज वरदान प्राप्त करने का युग है। अष्ट युग है ये, अष्ट। इसमें अभी दो बातें और, एक है स्मृति कौन सी होनी चाहिए और नशा कौन सा होना चाहिए। तुमको स्मृति कौन सी होनी चाहिए? नशा। नशा ये होना चाहिए कि इस युग में हम पाठधारी है। महाभारत में सांदीपानी आश्रम के आश्रम में श्री कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं हमारा ये भाग्य है कि आपके युग में हमने जन्म लिया। इसके लिए वो युग जब भगवान धरती पर आया तब हमने जन्म लिया, कितना अच्छी बात है कि आप जब धरती पे आने वाले थे तब हम भी साथ साथ, हमारा साथ साथ, हमारा पार्ट आपके साथ, वाह क्या बात है। एक इंग्लिश में किताब है, दे लिव्ड विद गॉड। शिष्य जो है अपने गुरु के लिए कहते हैं कि दे लिव्ड विद गॉड, हम उस युग में जन्म लिए जब हमारा गुरु था, तो ये हमारा भाग्य है। तो ये तुमको नशा होना चाहिए। और स्मृति कौन सी होनी चाहिए? सारा संसार जिसके लिए चात्रक है, एक झलक के लिए वो भगवान तुमको मिल गया, सारे अधिकार तुमको प्राप्त हो गया, इसकी तुमको स्मृति रहनी चाहिए। तो एक स्मृति, एक नशा। तो मिलन की दो बातें, ये दो बातें, और युग की आठ बातें। उसके बाद में इतना सब कुछ होने के बाद भी समर्थ क्यों नहीं है? कारण क्या बताया? क्योंकि व्यर्थ है। तो जहां व्यर्थ होता है वहां क्या होता है, और जहां समर्थ होता है वहां क्या क्या होता है? व्यर्थ और समर्थ, इधर नौ बातें हैं और इधर नौ बातें हैं, पर ऐसी अलग अलग नहीं है, एक के साथ एक है, पर हम उसको छांट के अलग अलग कर देंगे, उधर अलग इधर अलग। बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प, लंबा समय से समर्थ संकल्प चाहिए तो ही काम होगा। नहीं तो धोखा हो जाएगा। ये जो व्यस्त संकल्प है बहुत सारी चीजें कर देते हैं, इसके लिए व्यर्थ को समर्थ बनाना है। उसके पहले तो ये समझना पड़ेगा व्यर्थ से होता क्या क्या है। ये मुरली में बताया है हमको, अपने अंदर ढूंढना है मेरे अंदर व्यर्थ आता कहां कहां से, कारण क्या है मेरे व्यर्थ के। व्यर्थ के कारण, मुरली को छोड़ दो, व्यर्थ के कारण किसी से ईर्ष्या है और वो आगे जाता है तो व्यर्थ आता है। अहंकार बहुत ज्यादा है, जब भी अपमान होता है तो व्यर्थ आता है फिर, और अंदर खालीपन है। ऊपर से खाली दिखावा दिखावा है सेवाओं का, पर अंदर से आत्मा रिक्त हो चुकी है, खोखा, एक साकार मुरली थी। जनवरी 2017 उसमें बाबा ने कहा था ये सुनिया खोखा है, वैसे आत्मा भी खोखा, अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें पावर, ऊपर से खाली दिखावा चल रहा है, आडंबर, ये करूं वो करूं, कोर्स करूं वो करूं, सेंटर खोलूं, ऐसा करूं वो करूं ये करूं, और अंदर से रिक्त, कुछ है ही नहीं, तब व्यर्थ आएगा। तो अपने ही व्यर्थ को ढूंढना है कि व्यर्थ मेरे अंदर कहां से आता है। तो व्यर्थ संकल्प के आठ, व्यर्थ संकल्प से होने वाली आठ बातें बाबा ने बताई। सबसे पहली बात, जहां व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं। यदि मन में व्यर्थ आ रहा है तो यह मत समझना मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई परिस्थिति आ गई तो बहुत अच्छे से उसको सामना करूंगा। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं। व्यर्थ अंधकार है, समर्थ प्रकाश है, दिन है। दूसरा, व्यर्थ क्या कर देता है, नीचे गिराता है। व्यर्थ क्या करता है, नीचे गिरा देता है। और नीचे एक बार गिरे तो नुकसान क्या क्या है, गिरने के नुकसान। ऊपर से कोई गिरता है तो क्या क्या होता है माता जी, हाथ पैर टूटते, नहीं भी टूटे तो दर्द तो लंबा समय तक चालू रहता है अंदर का दर्द एक दूसरा, कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर ज्यादा हो गया होता तो, अगर मैं मर ही गया होता तो, मरे नहीं है पर सोच रहे चालू है। गिरने के बड़े, चलो फ्रैक्चर नहीं हुआ पर बाकी इमोशनल फ्रैक्चर्स हो गए अंदर। हमारे साथ ही बाबा ऐसा क्यों करता है पता नहीं, कौन से हिसाब है। ये सब बूढ़े बूढ़े इतने अच्छे से, एक भी बीमारी नहीं, और हम इतने जवान हो के इतनी बीमारी है। दवाई भी काम नहीं करती, कोई कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए तो, नया कोई मिले तो ठीक है, पुराने तो बहुत बोर हो गए। क्या करता है व्यर्थ संकल्प, गिरा देता है। तीसरा, व्यर्थ संकल्प उमंग उत्साह को खत्म कर देता है, इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की, क्या मुरली पढ़े, क्लास सुने, बहुत सुन लिया, बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम करना है ज्ञान योग से कितना ज्ञान योग कर करके थक चुके हैं, भक्ति में टिप्पर घिस गई तो इधर हाथ घिस गया मुरलियां लिख लिख के, पर होता तो कुछ भी नहीं। व्यर्थ संकल्प क्या करता है, तीसरा उमंग उत्साह खलास खत्म कर देता है। चौथा, व्यर्थ संकल्प उलझन में लाता है, क्या क्यों कैसे क्या करूं, और फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प से क्या होता है, चौथा क्या क्यों आ जाता है, या ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों करते हैं, मैंने तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया ना कभी सोचा, लोग मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्या क्यों, चौथा। पांचवा, अनुभूतियों की जो सूक्ष्म जो अनुभव है उससे वंचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अविनाशी प्राप्ति या अनुभूति से वंचित हो जाते हैं, कोई अनुभव नहीं होता है फिर, ना तो अशरीरीपन का ना बाबा के प्यार का, कोई अनुभव नहीं। योग पूरा हो गया, जैसे योग के पहले थे वैसे योग के बाद, मुरली के प्री एंड पोस्ट मुरली स्टेज सेम है व्यर्थ में एक रस है, व्यर्थ में एक रस, कि व्यर्थ से निकल ही नहीं पाते बाहर। कभी कभार थोड़ी सी समर्थ की झलक मिल जाती है, कभी कभी जरा सी हल्की सी, और इससे पहले कि उसको पकड़ो वो गायब। उसके बाद में व्यर्थ जहां है वहां पर क्या है, तूफान है तेज। क्या कहा बाबा ने, तेज तूफान। तूफान में स्थिर रहना कठिन है। वो कहां, उड़ीसा में 1699 में सुपर क्या आया था, सुपर साइक्लोन, कैसे सब उड़ गए थे, सब बैठे बैठे लोग, इतना भयंकर तूफान था। वो स्पीड कितनी थी विंड की निखिलेश भाई, 240 किलोमीटर पर आवर लगभग, 99 का सुपर साइक्लोन ओडिशा, 240 की स्पीड हवा की, कहां से कहां आदमी फेंक गया। अभी एक व्यक्ति ने ऐसा, उसकी बकरी थी, इधर देखा बाजू मुड़ के देखा तो बकरी गायब। इतना भयंकर। तो जब तूफान आता है तो मन में भी ऐसा ही होता है। अभी अभी श्रेष्ठ संकल्प किया, बाबा तुम मेरे साथ हो, अभी देखा गायब है ही नहीं। वो गया, उड़ गया, तूफान की तरह है व्यर्थ संकल्प। स्पीड बहुत फास्ट होती है, एक भी विचार पर स्थिर नहीं है व्यक्ति। अभी ये सोच रहा है, अभी ये सोच रहा है, अभी वो सोचता है, अभी वो सोचता है। हम देखते हैं कभी कभी कोई पेशेंट आता है, इतना व्यर्थ, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे कैंसर तो नहीं है ना, मेरा वो भी देख लो, मेरा वो भी देख लो, अच्छा मेरा वो तो देख लो, अरे नहीं मेरी माता को वो है उनको भी देख लो, अरे पहले तुम्हारा तो देख लो ना, मेरे दादा को भी ये था मुझे भी हो जाएगा क्या, ये काला क्या है, कैंसर तो नहीं है। एक मिनट भी स्थिर नहीं है, एक के बाद प्रश्न 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 प्रश्न, इतने प्रश्न इतने प्रश्न। तो क्या करता है व्यर्थ, तूफान लाता है। अगला, जहां व्यर्थ है वहां आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है। आत्मिक शक्ति क्या होती है, नष्ट होती है। आठवां, जहां व्यर्थ है वहां समय नष्ट हो जाता है। और नौवां, व्यर्थ संकल्प रचना है, पर रचना रचता को परेशान कर देती है। बेटा बाप को परेशान कर रहा है, रचना संकल्प है, वो बेटा पिता को परेशान कर रहा है, और मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट से परे ले चला जाता है, शान से परे। तो ये व्यर्थ होता है तो क्या हो जाता है, ये आठ बातें हो जाती, नौ बातें हो जाती है। कौन कौन सी, समर्थ नहीं रहेगा, दूसरा नीचे गिराता है, तीसरा उमंग उत्साह खत्म कर देता है, चौथा उलझन लाता है, ये करूं कि वो करूं, हे करावे किते करावे, टू डू और नॉट टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। बस यही प्रश्न है हैमलेट की तरह शेक्सपियर के, समझ में नहीं आता करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। मधुबन रहना है, सेंटर रहना है, सेंटर रहना है, घर रहना है, जॉब करना है नहीं करना है, डिपार्टमेंट में रहूं कि चेंज कर दूं, क्लास में जाऊं कि नहीं जाऊं, अगला सारी प्राप्तियों से वंचित कर देता है, अगला तेज तूफान है, अगला एनर्जी आत्मा की जो शक्ति है नष्ट होती जाती है। आत्मा में बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है, और चिंतन के लिए बहुत सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता है, और जिसका सारा दिन व्यर्थ में जा रहा है वहां चिंतन कहां से होगा। फिर कहेंगे बहुत हमको व्यर्थ आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, हम तो कभी व्यर्थ सोचते नहीं, पर अपने आप होता है। हम तो अच्छा ही सोचते, दिन बार पांच बार तो मुरली पड़ते हैं दिन में, फिर भी व्यर्थ ऐसा है कि पीछा छोड़ता नहीं। कई ऐसे भी है पांच पांच बार पढ़ते पर याद कुछ भी नहीं है, पर फिर भी दाद देनी पड़ेगी उमंग उत्साह की, छोड़ा नहीं है अभी तक, पकड़ के रखा है। अगला समय नष्ट, और लास्ट रचता ही परेशान, आत्मा ही परेशान। तो जहां व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं हो सकता, तो यह है व्यर्थ संकल्प। अब जब समर्थ संकल्प है उसकी नौ बातें हैं, समर्थ संकल्प क्या क्या करते हैं? सबसे पहला भगवान से मिलन मना लेता है। जहां समर्थ संकल्प होंगे भगवान से मिलन अपने आप होते रहेगा, प्रभु से निरंतर मिलन। जहां समर्थ होगा वहां सहज ही माया जीत होंगे, मां स्वतः ही विकारों से मुक्त होंगे, नहीं तो विकार कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, कहीं ना कहीं से रग रग में विकार भरे है, भूत भूत भूत। तीसरा सफलता, तीसरा सेवाधारी, तीसरा सहज क्या करता है, सेवाधारी स्वरूप बना देता है, सेवाधारी स्वरूप। सेवा बहुत बड़ी चीज है, सेवाधारी स्वरूप बना देता है। चौथा जो सोचेंगे जो कहेंगे, जो सोचेंगे और करेंगे वो एक हो जाएगा, सोचना करना एक, ये बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है ये, सोचना और करना सेम, या जो व्यक्ति बोल रहा है वही करना, बोले तैसा साले त्याची वंदना पावले, अंगे झाड़ी ना अंग ना त्याचे दायित्व करी ना। संत कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है वो करता है, मैं अपने शरीर का झाड़ू बना के उसके आंगन को झाड़ूंगा अगर ऐसा कोई मिल जाए मुझे तो, पर मिलता ही नहीं क्योंकि व्यक्ति सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और करता तीसरा ही है जो उसको भी नहीं पता रहता है, बाद में पता चलता है ये मेरा है। तीन, टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, शेक्सपियर की एक कविता है सोनेट, जिसमें वो कहता है वही करो जो सोचते हो और वही बोलो, वही करो जो बोलते हो और वही बोलो जो सोचते हो। तो चौथा जो सोचोगे वही करोगे। पांचवा कर्म और संकल्प समान, इनकी जो लकीर है बाबा ने कहा गुह्य गति ये समान होगी, कर्म की और संकल्प की गति समान होगी। अगला बहार, सदा बहार और हरा भरा रहेगा, समर्थ संकल्प वाला कैसा रहेगा, हरा भरा रहेगा, सदा बहार रहेगा, और सदा बहार मतलब सदा अंदर जो है वो सदा बाहर है, जो सदा अंदर है वो सदा बाहर है, सदा अंदर है वो सदा बाहर मतलब हरा। उसके बाद में हाँ यहां है वो धैर्य, संकल्प और कर्म की गति बड़ी धैर्यवत होगी, यहां है वो बड़ी संकल्प और कर्म की गति बड़ी धैर्यवत होगी, फिर ये हरा भरा। उसके बाद में अगला पॉइंट, समर्थ संकल्प क्या करते हैं, आत्मिक एनर्जी को सेव करते हैं, समर्थ संकल्प क्या करते हैं, आत्मिक एनर्जी को सेव करते हैं। अगला वो लास्ट है, उसके पहले श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते, नौवा उसके पहले समय भी सफल होता है यहां पर। तो समर्थ संकल्प हो गए तो ये सारी चीजें होगी, और व्यर्थ संकल्प होंगे तो ये सारी चीजें होगी। अब समर्थ संकल्प क्यों नहीं है, तो उसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि व्यर्थ है, और व्यर्थ को अब मिटाने की विधि क्या है, अब यहां पर मुरली है, तीन स्टेजेस मुरली की, कौन कौन सी, तो मुरली में तीन स्टेजेस है, पहला लिसनिंग, दूसरा मर्जिंग और तीसरा एम्बॉडीमेंट। सुनना अर्थात बाबा ने कहा केवल सुनते हैं खुश हो जाते हैं रस मिलता है, परंतु जैसे मुरली खत्म हुई खलास। श्रवण बहुत अच्छी चीज है, मुरली सुनना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका भगवान की वाणी सुनने के लिए जिनके कान बहुत विशाल है समुद्र जैसे, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो सुनना बहुत अच्छी चीज है, परंतु यहां तक ही सीमित ना हो, अपने सुनने को आगे तक लेके जाना है, कहां तक, समाने तक। समाना अर्थात धारणा बन, धारणा युक्त, समाना अर्थात अपने अंदर धारण करना, एक एक पॉइंट की मुरली की कोई एक बात देख लेना, हाँ ये है, जैसे आज की मुरली में का वायदे की जो फाइल है उसको क्या करो, फाइनल कर दो अभी, ये मुरली का एक वाक्य है, क्योंकि वायदे कसमें अगर कोई तोड़ता है इस्लामिक लिटरेचर में एक वाक्य है वायदों के लिए कि हर वायदा तोड़ने की, हर वायदा तोड़ने का कफारा नहीं होता, कुछ वायदा तोड़ने की सजा होती है। हर वायदा तोड़ने का कफारा अर्थात पश्चाताप नहीं होता है कि तुमने वायदा तोड़ दिया तो पश्चाताप कर लो, ऐसा नहीं होगा। हर वायदा तोड़ने का कफारा नहीं होता, कुछ कुछ वायदा तोड़ने की सजा होती है। अरे मुझसे गलती हो गई बाबा, माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया, पश्चाताप कर लिया, काम पूरा हुआ। नहीं, जो बड़े अपराध करते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उनको सजा सुनाई जाती है, उनको जेल में रखते, भरे वो गलती से उससे हो गई है, फिर भी जेल तो उसको भुगतना पड़ेगा क्योंकि मारा है किसी को, अपराध तो किया है, सजा। इसके लिए वायदे तोड़ना, हर वायदे के लिए कफारा, रिपेंटेंस, पश्चाताप, प्रायश्चित नहीं है। कुछ कुछ वायदे तोड़ने के लिए क्या है मंजू बहन, सजा, कड़ी सजा। और सजा में क्या होता है, दर्द होता है, बहुत दुख होता है। कितना, कितनी, कितने संकल्प चलते होंगे जिसको, जो प्रिजन में जाता है, जेल, और जिसको 20 साल की सजा मिल गई, पूरा जवानी उसमें चल, निकलने के बाद क्या करेगा, जॉब करेगा, क्या करेगा, खाएगा क्या, पति वो सब कहां है, पत्नी सब चले गए, हाँ, इसलिए। तो एक है सुनना, दूसरा क्या है, धारण करना, समाना उसको, एक एक ज्ञान की पॉइंट को अंदर जाने देना, और फिर तीसरा उसका स्वरूप बनना, जो स्वरूप बनते हैं वो शक्तिशाली, और जो शक्तिशाली है वो दूसरों को शक्तिशाली बना सकते, केवल समाने वाले भी शक्तिशाली नहीं बना सकते, जो स्वरूप बन चुके हैं वही शक्तिशाली दूसरों को बना सकते। तो मुरली की ये बाबा ने 3 स्टेजेस बताई। तो जब मुरली के, इसके लिए एक एक महावाक्य, मुरली के साथ 2 काम करने हैं, एक तो महत्व को समझना है और दूसरा मनन करना है। इसमें 2 बातें, मुरली का क्या है, महत्व कम समझते बाबा ने कहा, महत्व को समझना है और क्या करना है, सारे दिन भर मनन करते रहना है। मनन केवल सुबह नहीं, मनन हो गया पूरा काम पूरा हुआ, सारे दिन भर उसका मनन कर लेना, एक एक पॉइंट्स का। उसके बाद में 3 नदियों का गायन, एक है महासंकल्पधारी, दूसरा है महाललकार करने वाले, और तीसरा कर्नाटक है महाभावना वाले। इसके लिए महाफल उनको, महान फल उनको प्राप्त होता है। और पंजाब वाले महाललकार करने वाले, और महाराष्ट्र वाले महान संकल्प करने वाले। तो बाबा ने कहा ये 3 नदियां हैं। तो सारी मुरली संकल्प पर, ज्ञान पर, श्रेष्ठ चिंतन पर। इसके लिए कहीं पर भी स्वयं को व्यर्थ में नहीं जाने देना। मम्मा, दादी जानकी ने लिखा है, आई हैव नेवर सीन मम्मा इंडल्जिंग इन गॉसिप्स। मम्मा को कभी भी मैंने किसी भी तरह की गॉसिप्स करते हुए नहीं देखा, इधर की बातें उधर, यहां की बातें वहां, कोई लेना देना नहीं, ऐसी उपराम स्थिति। तो व्यर्थ से मुक्त होना है, ऐसे कैसे, समर्थ संकल्पधारी आत्माओं को, ऐसे स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सुनने वाली, समाने वाली और स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, ऐसे असंभव को संभव बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे महान महामिलन मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे महान युग में पाठधारी आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ अनुभूति करने वाली आत्माओं को, ऐसे सहज वरदान को प्राप्त करने वाले, अगर सहज ना मिले तो ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, विशेष परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ संकल्प की बातें, ऐसे सहज मायाजीत बनने वाली आत्माओं को, ऐसे समय सफल करने वाली, शक्तियां सफल करने वाली, ऐसे श्रेष्ठ शान की स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे सोचना और करना समान करने वाली आत्माओं को, ऐसे धैर्यवत संकल्प और कर्म की गति को धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा बाहर आत्माओं को, ऐसे तूफान और उससे मुक्त रहने वाली आत्माओं को, ऐसे महान संकल्प करने वाली। तो ऐसे इतने सारे ढेर सारे समान मूल्य में करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति।
मुरली एक मधुबन सखीरी मैंने।